ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨਾਲ ਕੋਣਾ ਕੋਣਾ ਸਜਦਾ।
ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੰਡਨ ਸਾਰ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਜਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ। 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 74 ਡੈਵਨ ਰੋਡ ਜਾਂ 142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਸਾਊਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਦੋਨੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ 9058747171।
The biggest cricket event has begun. Yes, ICC Cricket World Cup 2019. आपके लिए लेकर आए हैं क्रिकेट का सबसे बड़ा शो नॉर्थ अमेरिका में। हम आपको देंगे लेटेस्ट न्यूज, इनसाइड एंड आउटसाइड अपडेट, मैच एनालिस्ट, टीम एंड प्लेयर स्टैट्स, ट्रिविया क्वेश्चन, सरप्राइज इंटरव्यू एंड एक्साइटिंग प्राइजेस। देखिए मैच पॉइंट रोजाना रात 9 बजे डॉक्टर अदनान के साथ सिर्फ ई आवाज टीवी पर, फेसबुक या फिर eawaz.com।
कैनेडा डे कार्निवल खुशियां ते जावां दी पावेगा तमाल। जिते होंगे मनकीरत औलक, शेरी मान, कुरनाम पुल्लर, राजवीर जवंदा, आर नित, तनिष्क कौर, हिमांशी खुराना, रवनीत, गगन कोकरी, सिंगा, कॉमेडी किंग, कपिल शर्मा।
पहुंचो ब्रैम्पटन फेयरग्राउंड्स, हाईवे 410, मेफील्ड रोड।
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, लार्जेस्ट ह्यूमन मैपल लीफ अटेम्प्ट। वधेरी जानकारी लिए कॉल करो दविंदर तालीवाल, जगराज सिद्धू,
416-302-36-400।
एंट्री फ्री, मेला फ्री।
जी सामने कराम, वेलकम बैक अगेन। 6:28 हमारी घड़ी में हो चुके हैं और सब एवरी वेंसडे को हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फजल बदूद से। इनका ताल्लुक इंश्योरेंस प्रो से है एंड आपने लाइफ इंश्योरेंस लेनी हो, क्रिटिकल इंश्योरेंस या किसी भी किस्म की इंश्योरेंस और सेविंग प्लान्स वगैरह लेने हो, तो उसके मुताबिक पिछले हफ्ते भी हमारे पास आए थे स्टूडियो में और हमें बड़ा अच्छा एक प्लान के बारे में बता रहे थे। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई उसी प्लान के बारे में बताएं मुझे। फ़ोन नंबर पहले नोट कर लें इनका, 6472864285। फजल बदूद में साथ लाइन पर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं आप?
जी वालेकुम सलाम माजिद भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह सर। अब बताइए, आप कोई बच्चों के लिए एक सेविंग प्लान की बात कर रहे थे एंड दैट इंटरेस्टेड मी अ लॉट। मैंने कहा कि आपसे फिर पूछूं कि बता रही, बताइए आप।
जी बड़ी मेहरबानी। बेसिकली प्लान कुछ इस तरह है कि खास तौर पर ये प्लान जो है जिनके बच्चे छोटे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि जी उनके लिए को थोड़ी सी सेविंग और इस किस्म का प्लान, और मैं इसको इस तरह कहता होता हूँ जैसे कि एक माँ बाप एक पौधा लगा दें बच्चे के लिए
जी,
और ये सोचें कि उसका फल जो है बच्चे की अपनी मर्जी है वो कब खाए। और प्लान बड़ी छोटी सी अमाउंट के साथ भी शुरू किया जा सकता है, और अमाउंट तो खैर अपनी मर्जी है, अपनी अफोर्डेबिलिटी है। लेकिन मैं एक बहुत छोटी एग्जाम्पल एक छोटी सी अमाउंट से अगर दूं कि एक बच्चा आप यूं समझ लें कि अगर 6-1 साल का है
जी,
बाय द वे ये प्लान तकरीबन 20 साल के बच्चे तक काम कर सकता है, और 20 साल के बच्चे बहरहाल आपको बच्चा कहलवाना तो पसंद नहीं करते।
सही बात है।
ये है कि माँ बाप के लिए वो हमेशा बच्चे कहते हैं। तो वो प्लान कुछ इस तरह है कि आप अगर 20 साल देते रहते हैं उसको, अच्छा ये 20 साल को भी हम 15 भी कर सकते हैं, तो वो यूं समझ लें कि एक बच्चा जो है तकरीबन जब 25-26 साल का होता है तो समझ लें कि उसमें $25,000-30,000 उसके लिए जो है वो वहां पे पड़े हुए हैं, और अगर वो चाहता है अपनी एजुकेशन के लिए या ये है एक पॉइंट वो है वहां पे आप निकलवा सकते हैं उसमें से, और अगर वो नहीं है आप उसे चलते रहें और मान लें कि कोई 30-35 साल की उम्र में अगर शादी वादी करवा के और अब वो कह रहे हैं जी कि वो घर वर लिया जाए, तो फिर वो अमाउंट उससे कोई 40-1 हज़ार के करीब, ये एस्टिमेटेड नंबर्स हैं लेकिन बड़े एक्यूरेट भी हैं क्योंकि गारंटीज हैं इनमें, तो वो तकरीबन एक अमाउंट 30-35 साल की एज में बच्चे के लिए पड़ी हुई है। और साथ साथ ये है कि खुदा ना खास्ता एक डेथ क्लेम तो बढ़ ही रहा है। अच्छा अब देखने की बात यह है कि ये आपने 20 साल सिर्फ देना है, तो ये जो मेरे सामने इलस्ट्रेशन यहाँ पे पड़ी हुई है अगर मैं इसको देखूं तो यूं समझ लें कि आप तकरीबन $22,000-23,000 देते हैं और 20 साल के बाद उसमें $26,000-22,000 आपका बन चुका होता है. तो इन अदर वर्ड्स जो पैसे दिए थे वो वापस ऑलरेडी आ चुके हैं. एक किस्म का एक सेविंग अकाउंट है जो कि बड़ा है और सेफ्टी इसके अलावा एडिशनल है. अब अगर आप हम इसको टच नहीं करते, मान लीजिए कि बच्चे की एजुकेशन का भी बंदोबस्त हो गया, उसको डाउन पेमेंट की भी जरूरत नहीं है और प्लान इज ग्रोइंग, तो ये एक गिफ्ट है जिसमें बच्चे ने अब कुछ नहीं करना मां सिवाय इसके कि उस पॉलिसी को संभाल के रख ले. तो अब आप ये देखिए कि एक बच्चा अगर मान लें कि 60-65 में वो सोच रहा है कि मेरे पास इस पॉलिसी ने क्या बनाया, तो समझ लीजिए कि कोई 2.5 लाख के करीब उसमें पॉलिसी में उसकी अमाउंट जो है एक्यूमुलेट हो चुकी है. और खुदा ना खास्ता एक 60-65 साल का शख्स जो कि अब वो एक मैच्योर मैन और वुमन बन चुका है, अब अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो फैमिली के लिए 5 लाख प्लस की डेथ क्लेम है. और अगर वो समझ लीजिए अपने लिए निकालना चाहता है या यूज करना चाहता है तो 2.25 लाख 2.5 लाख डॉलर उसमें पड़ा हुआ है एंड इट इज स्टिल ग्रोइंग. और अगर हम इसको फर्दर ऐड करना चाहें तो इवन इनमें से इसमें से हम 1200 डॉलर जो है वो हम मंथली ड्रॉ भी कर सकते हैं. तो दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लान. मोर डिटेल के लिए, क्योंकि टेलीफोन पे बेसिकली तो मैंने तकरीबन सारा प्लान समझा लिया, लेकिन यकीनी बात है कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं. तो मेरी सजेशन ये होगी कि मशवरा और बात करने में कोई हर्ज नहीं है. इफ इट मेक सेंस टू यू एस्क मी अ क्वेश्चन. और आई एम श्योर कि ये प्लान, क्योंकि मैं बहुत सारे दोस्तों को बहुत सारी फैमिलीज को ये मैं दे चुका हूँ. इनफैक्ट मैंने अपनी बच्चियों के लिए ये प्लान 20 साल से चलाया हुआ था. तो बात यह है, उसके लिए एक मेरा नंबर है जी 647-286-4285. मुझे कॉल कीजिए, एस्क मी अ क्वेश्चन, और अगर चीज समझ आए तो आई एम हियर टू हेल्प सर.
साउंड्स लाइक अ वेरी गुड प्लान सर जी. साउंड्स लाइक अ वेरी गुड प्लान कि आप अपने बच्चों को एक तोहफा दे रहे हैं कि जो 20 साल की उम्र 22-23 साल की उम्र में वो कैश कर सकते हैं, 30 साल की उम्र में कैश कर सकते हैं, या उसको कंटिन्यू करके वो आप 65 या 60 की उम्र में आप कैश कर सकते हैं. साउंड्स लाइक अ वेरी गुड प्लान. आप इस प्लान की फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए फजल वदूद से कॉन्टेक्ट कर लें 647-286-4285. फजल वदूद का फोन नंबर है. और क्या कहेंगे सर?
बस सर, जो हमेशा हमारा एक पैगाम होता है, मेरा ऑल टुगेदर 27 इयर्स का एक्सपीरियंस इस फील्ड में, आई वर्क्ड एज चीफ अंडरराइटर एंड इस किस्म की पोजीशंस पे, इसी किस्म का भी कोई अगर मेडिकल रिलेटेड कोई समझता है कि उसको मेडिकल कंडीशन है, उसको पॉलिसी नहीं मिल सकती, फील फ्री टू गिव मी अ कॉल. इसके अलावा अगर किसी को क्लेम में प्रॉब्लम आ रही है, कई दफा ये होता है, मेरे पास इस वक्त मेरे टेबल पे 2 से 3 फाइल्स पड़ी हैं जिनमें किसी साहब ने पॉलिसी तो बेच दी, अब क्लेम में प्रॉब्लम आ रही है. तो सिंस आई हैंडल्ड क्लेम डिपार्टमेंट एट वन पॉइंट, तो मुझसे आप बिना झिझक बात कीजिए. उस सर्विस या उस मदद की कोई फीस नहीं, सिर्फ ये है कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें इंसान रिस्क तो अल्लाह की तरफ से आता ही है, लेकिन अगर किसी फैमिली की हेल्प हो जाए तो उससे अच्छी बात कोई नहीं.
बहुत कोई बहुत
फ्री टू गिव मी अ कॉल जी एनी टाइम 647-286-4285 इज माई नंबर सर. आजिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का सर.
थैंक यू सो मच फजल वदूद साहब. एंड जो आपने ये बात बताई है उससे पता लगता है कि यू आर डाउन टू अर्थ वेरी प्रोफेशनल पर्सन. एंड सामने का करीम, आप कॉल करें फजल वदूद को, उनका फ़ोन नंबर नोट कर लें 647-286-4285. बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका.
बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह अगले आपसे मुलाकात होती है.
वालेकुम अस्सलाम. फजल वदूद से मैंने आपकी बातचीत करवाई, और इनका फ़ोन नंबर अगेन 647-286-4285 इनका फ़ोन नंबर है. एक गीत की तरफ ले चलूँगा, उससे पहले मैं आपको बता चलूँ कि भाई एक यहाँ पर ईद एग्जीबिशन आने वाली है, मल्टीपल डिज़ाइनर ईद एग्जीबिशन सैटरडे 13 जून को 13 जुलाई को सैटरडे 13th of July को 11 बजे से लेकर 8 बजे तक ही होगी। हिल्टन गार्डन इन 1870 मैथिसन बुलेवार्ड इन मिसिसागा, यहाँ पर ही होने जा रही है। पाकिस्तान से बहुत सारे डिज़ाइनर्स अपने कपड़े लेके यहाँ पहुँच रहे हैं, तो ख्वातीन के लिए भाई ओपन इनविटेशन है। देयर इज़ नो टिकट इन टू इट, एंड टिकट के साथ साथ आप पार्किंग वगैरह एवरीथिंग इज़ फ्री। बस पहुँच जाइए, आप खुद भी जाइए, अपने दोस्तों अहबाब को लेके पहुँचिए। मल्टीपल डिज़ाइनर ईद एग्जीबिशन, कपड़ों की एग्जीबिशन है ये। सैटरडे जुलाई 13 को होगी, 11 बजे से लेके 8 बजे तक ये एग्जीबिशन होगी। अगेन हिल्टन गार्डन इन 1870 मैथिसन बुलेवार्ड इन मिसिसागा। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं 6475724353। और इसके साथ साथ सब एक कैनरा डे बोट क्रूज हर साल की तरह आने वाला है। फन एंड डिनर कैनरा डे बोट क्रूज मंडे जुलाई 1 को ही होने जा रहा है। इसमें आप व्यू स्काईलाइन एंड लैंडमार्क्स एंड 5 आवर्स का नॉन स्टॉप क्रूज इंजॉयमेंट होगा। अनलिमिटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉफ़ी एंड टी, लकी ड्रॉ होगा वहाँ पर। और इस क्रूज को मैं आप हिस्सा लेने के लिए आप जो भी लोग अपने दोस्त अहबाब मिलके जाइए, आप भाई आप फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए कॉल कर लें अयूब सिपरा को 416-577-0055 इनका फ़ोन नंबर है। चलिए साहब ले चलो एक गीत की जानेब। कोई कॉलर भी कॉल कर रहे हैं, मुझे पूछ लूँ क्या बात है पहले इनसे। नहीं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने फ़ोन हैंग अप कर लिया। एनीवे यू कैन ऑलवेज गिव मी अ कॉल 416-620-1778 हमारा फ़ोन नंबर है 416-620-1778। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई।
जी वालेकुम सलाम।
राजा अफजल बात कर रहा हूँ।
कौन बात कर रहे हैं?
ताज अफजल खान।
राजा अफजल खान जी फरमाइए।
ताज अफजल खान, ताज अफजल,
ताज अफजल जी, ताज भाई फरमाइए।
कैसे माजिद भाई? ठीक ठाक
अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह।
रेडियो तो सुनते रहते लेकिन आज कॉल एक इसलिए किया कि पाकिस्तान में जीत गया, सबको मुबारक हो।
बहुत बहुत शुक्रिया। खैर मुबारक।
एक चीज जो अगर आपने नोट की हो, जब बाबर ने सेंचुरी बनाई तो अपना हार्ट हेड जब सर से उठाया तो सितारे को चूमा उसने।
यस।
और वो सितारे को चूमना जो था ना, कि ये बंदा अपने लिए नहीं पाकिस्तान के लिए खेल रहे, पाकिस्तान से मोहब्बत दिखाई।
मैंने भी नोट किया सर, ये बहुत अच्छा जेस्टर था उसका,
तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा उसने सजदा किया।
यस।
कि पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान। सिंधी बलोची पंजाबी पश्तून के लिए नहीं बना था, इस्लाम के लिए बना था।
सही कहा आपने।
तो ये जो लोग हमें कौमियतों में तकसीम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करते हैं।
सही।
और तीसरी बात ये है कि माजिद भाई, आपके हमारे घर में खानदान में अगर कोई मसला हो ना, तो हम बाजारों में बात नहीं करते अपने खानदान के बारे में।
सही है।
और मस्जिदों में नहीं करते। तो पाकिस्तान के जितने भी लीडर हैं, भले वो इमरान खान है, नवाज शरीफ है, जो भी है, वो पाकिस्तानी है। और कनाडा में हम जब अपनी मुल्क के बारे में ऐसी बात करते हैं तो अपनी मुल्क की बेइज्जती करते हैं।
सही कहा आपने। तो
हमें अगर कुछ करना है तो जाके उधर सियासत में हिस्सा ले करें, लेकिन खुदा रहा दूसरे ममालिक में कनाडा में आके अपने मुल्क को बदनाम ना करें।
बहुत अच्छी बात,
बात कर सकते हैं, नेकी की बात कर सकते हैं। खुशी का मौका हमें इतने दिनों बाद मिला, पाकिस्तान जीता, इसको सेलिब्रेट करें, कुछ अचीवमेंट्स दिखाए पाकिस्तानियों की जो कनाडा में कर रहे। लेकिन ये चीजें मेरे ख्याल में पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं, अपने थोड़ी इज्जत बाकी है उसको भी नीलाम कर रहे।
कोई नहीं कर सकता सर, आप और मैं जब तक जिंदा हैं यहाँ पर ताज भाई, नॉट टू वरी अबाउट इट, हम इंशाल्लाह ऐसा होने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया,
इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया माजिद भाई,
बहुत शुक्रिया ताज भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो माजिद भाई, जितने भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई सुन रहे हैं, सबको मुबारक हो मैच जीतने के लिए।
बहुत शुक्रिया।
तो बड़ी खुशी हुई دوسرا یہ ہے کہ پاکستان سے ماشاءاللہ کوئی ایسا آدمی, میں تو اس کو کیا لفظ بولوں کہ جو بھی ہے پاکستان سے تو محبت کرتے ہی ہیں. اگر کوئی سسٹم ایسا خراب ہے تو وہ اپنا اپنی سوچ ہے, سسٹم کی وجہ سے پاکستان کو کوئی نہیں برا کہتا, سسٹم کو کہہ سکتا ہے, پاکستان کو کوئی بھی نہیں کہتا. دوسرا, کل آپ نے وہ ہماری ملٹری کے بارے میں, کوئی بھی وہ حلالی نہیں ہے کہ ہماری ملٹری کے خلاف کوئی بولے, وہ ہماری جانوں کے محافظ ہیں. اصل میں ماجد بھائی, جتنے بھی پولیس بھی ایک پورا ادارہ ہے نا پاکستان کے لیے, وہ بھی تو ہماری حفاظت کر رہے ہیں نا. عدلیہ بھی ہمارا, سب سے پہلے تو عدلیہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو جنرل کو بھی وزیر اعظم کو بھی سیدھا جیل میں ڈال سکتے ہیں, ان کے پاس بہت پاور ہے. لیکن ہمارے بھائی عدلیہ کو بھی برا کہتے ہیں, پولیس کو بھی کہتے ہیں. آج سے اگر وعدہ یہ کر لیں, خان صاحب بڑی اچھی بات کر کے گئے ہیں, اپنے جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں ان کے خلاف اگر کوئی ایک آدمی دو آدمی ہیں تو پورا ادارہ تو نہیں خراب نا. یا تو اس آدمی کا, اس جو بھی جنرل ہو یا کوئی بریگیڈیئر ہو, کوئی بھی پولیس والا ہو, آئی جی ہو یا اس کے ایس پی ہو, اس کا نام لے کے آپ کہیں, پوری پولیس کو بھی نہ کہیں, نہ پوری عدالتوں کو کہیں. عدالتیں بھی تو جتنے بھی جج ہیں سارے خراب تو نہیں ہے نا. یہ کہتا اگر ہے تو ساری ہمارا کیا عدلیہ سارا, کسی وقت ایسے سنتے ہیں جی عدلیہ ایسا کر رہا ہے, عدلیہ وہ, جی ساری عدلیہ ہی آتی ہے. ایسے آج تک اب بالکل نہیں بولنا. اور آپ بھی ماشاءاللہ, آپ نے کل کہا کہ فوج کے بارے میں میں کچھ نہیں سن سکتا, ویری گڈ, اچھی بات ہے, محبت ہے,
صحیح بات ہے.
لیکن آج کے بعد یہ بھی آپ وعدہ کر لیں کہ کوئی بھی اگر کسی محکمے کے خلاف بھی بولے, اگر کسی نے کیا تو اس کا نام لے کے بولو کہ یہ ہے.
صحیح بات, ایک دم صحیح بات.
پوری پولیس, پوری عدلیہ اور پوری فوج جو ہے وہ ہماری حیثیت ہے. تھینک یو سو مچ,
بہت شکریہ آپ کا, ایک دم صحیح کہا آپ نے, ایک دم صحیح کہا جی. ہیلو, السلام علیکم.
جی السلام علیکم, میں ماجد بھائی,
جی جی
بہت شکریہ کال لینے کا. میرا نام محمد عمر ہے. سب سے پہلے تو آج پوری قوم کو میں خوشخبری ہے اور سیلیبریٹ کرنا چاہیے آج جیسا پاکستان کھیلا. ایک بات صرف یہ میں کہوں گا کہ آج جیسے بابر اعظم نے 100 کی تو جب اس نے ہیلمٹ اتارا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے. کیونکہ ذرا ہم فینس بھی ہیں لیکن وہ بھی ایک انسان ہے, پلیئر ہے, ملک کے لیے کھیلتے ہیں. کبھی ذرا ڈاؤن فال بھی آ جاتا ہے ٹیم پہ, لیکن ہم لوگ نہیں, پاکستانی قوم نہیں برداشت کرتی اور وہ گالی گلوچ اور برے الفاظ یوز کرتی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ہم ریپٹرز کو بیک کرتے ہیں, یہاں پہ ریپٹرز پہلی دفعہ جیتی ہے نا سر چیمپئن شپ, لیکن ہر سال اسی طرح ہی ہمارے فینس جاتے ہیں, میچز دیکھتے ہیں, ہر سال اسی طرح ہی میپل لیگز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. کبھی ہوگا جیتے گی بھی انشاءاللہ. تو دوسرا یہ ہے کہ جس آپ یہ واحد سر ریڈیو شو ہے, میں آپ کی بہت عزت بھی کرتا ہوں, جس صاحب نے کہا کہ پاکستان کے اداروں اور خاص طور پر پاکستان کی فوج کے خلاف آپ باتیں سنیں گے, تو سر یہ آپ کی بہت بڑی بات ہے اور یہ ایسے ہی ہونا چاہیے. کیونکہ آج اگر پاکستان کھڑا ہے تو وہ پاکستان کی آرم فورسز اور پیرامیلٹری فورسز کی ہی وجہ سے ہے. جو بھی پچھلے حالات 70 سالوں میں جو بھی نشیب و فراز آئے, لیکن ہماری فوج نے ہی ہمیں سنبھالا ہے. ہاں, اچھے برے لوگ آتے ہیں, ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے اور ہو بھی رہا. جس طرح کراس بورڈ دو لوگوں کا کورٹ مارشل ہوا, ان کو پھانسی کی سزا آرمی میں بھی دی گئی ہے, تو آرمی ایک منظم ادارہ ہے اور وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہاں کرپشن ایسا سر عام ہو. میری فیملی میں بہت زیادہ لوگ آرمی میں ہیں اور میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اس کی. میں خود بھی پی ایف کیڈٹ کالج سے پڑھا ہوں, اپنے ہائی اسکول میں نے وہاں سے کیا ہوا.
بہت شکریہ سر, آپ کا
بہت شکریہ سر,
بہت شکریہ سر, بڑی مہربانی آپ کی. جی اور السلام علیکم.
کیا حال ہے ماجد بھائی؟ مشتاق خان بات کر رہا ہوں.
جی مشتاق بھائی, کیسے ہیں آپ؟
اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک بالکل. پہلے تو سب سے بڑی مبارکباد کہ بھائی پاکستان نے آج ایک اور مارکا سر کر لیا ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لوگ جو ہے بہت قریب پہنچ رہے ہیں سیمی فائنل اور فائنل کے. انشاءاللہ اگر اسی طرح ہماری ٹیم چلتی رہی تو امید ہے کہ ہم لوگ جو ہے سیمی فائنل بھی کھیلیں گے, اس کے بعد فائنل بھی کھیلیں گے
انشاءاللہ.
دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا مجید بھائی, دیکھیں حکومت سے آپ لاکھ اعتراض کریں, مخالفت کریں, سب کریں, لیکن ریاست کے ساتھ آپ کو ہمیشہ وفادار رہنا پڑے گا. کیونکہ وہ جو ریاست ہے نا وہ کسی کی نہیں ہوتی ہے, ریاست ریاست ہے اور اس نے کسی کی وجہ سے آپ کی پہچان ہے. اگر آپ ہم یہاں آئے ہیں, ہم ریاست نے ہمیں اجازت دی ہے نا, کیونکہ حکومت نے نہیں دی ہے, ریاست کا پاسپورٹ لے کے ہم لوگ یہاں آئے ہیں. اور یہاں بیٹھ کے اگر ہم ریاست کو برا بھلا کہیں گے تو ہم سے زیادہ غیر کوئی بھی نہیں ہوگا. تو ہم لوگوں کو ذرا یہ خیال کرنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر آپ کی مخالفت ہے عمران خان سے عمران خان کو کہیں آپ, لیکن فوج کو, عدلیہ کو اور دوسرے ریاستی اداروں کو بالکل بھی آپ کو وہ نہیں کرنا چاہیے. और खास तौर पर यहाँ बैठ के जबकि दूसरे लोग भी आपको सुन रहे हैं वो यही हंसे हमसे हमारे बड़ा मजाक उड़ाते हैं क्या आपके ऐसे लोग हैं जो आपने फौज को बुरा कहते हैं आपके आपके दलिया को बुरा कहते हैं।
बहुत शुक्रिया सर पुश्ता भाई आपका मैसेज चला गया आपका बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉल हेलो अस्सलाम वालेकुम
जी। वालेकुम सलाम जी मैडम
जी सर
इस परचम के साए तले हम
एक हैं
एक हैं हम एक है। अच्छा देखें मिलिट्री की बात हो रही थी कि मिलिट्री की अपनी भी अदालतें अगर वो करते हैं तो मिलिट्री कोर्ट है वो वहां पे लेकर जाते हैं। यूएस में भी अगर कोई मिलिट्री करती है तो वो मिलिट्री उनसे एक निपटती है। दूसरा मेरे ये सवाल है कि देखिए जब कोई पुलिस वाला को गलत करेगा क्या आईजी डीआईजी ने ये कहा है कि इसको फांसी दे दे? मेरा ये सवाल है। दूसरा ये है कि जो पठान है पाकिस्तान की जब पार्टीशन भी नहीं हुई थी उससे पहले एक रह रहे थे अब उनपे एक जो है ना एक फतवा एक जारी कर देना कि सब पठानों को एक पाकिस्तान से निकाल दे? नहीं भाई मैंने पाकिस्तान में कभी किसी पठान को भीख मांगते के जो है ना हाथ फैलाए हुए नहीं देखा। ये हमारे भाई मेहनत मजदूरी कर लेंगे रेडी लगा लेंगे बूट पॉलिश के करते करते इनको देखा है बच्चों का पेट पाल लेंगे बड़े बड़े जो है ना उर्दू पे है लेकिन ये नहीं है कि किसी का रिज़्क एक जो है ना छीन कर अपने बच्चों के मुंह में एक नवाला दे रहे हैं। दूसरा ये है कि जो जजेस साहिबान बैठे हुए हैं क्या आज तक उन्होंने अभी कोई एक फैसला किया है कि जो है फला जज ने किया है कि उसको फांसी दे दें? मेरा ये सारे पाकिस्तानियों से सवाल है को टारगेट नहीं कर रहा बात यह कि मिलिट्री है यकीन करें माजिद भाई जो हालात थे अगर पाकिस्तान की मिलिट्री ना होती तो आज पाकिस्तान का फ्लैग यूनाइटेड नेशन के पर जिसके सामने लहराना रहा होता।
बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया जी सर जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम
लेकिन बात ये है कि जब यू कहते हैं ना कि कोई इदारे को बुरा ना कहे कोई किसी को बुरा ना कहे तो उसमें मेरा ये है कि टाइम टू टाइम किसी भी उसके खिलाफ ना हमारे जो इदारे होते हैं ना उसके खिलाफ हो जाते हैं। अगर आप गौर करें तो आजकल बेचारे पठानों में बड़ाई आई हुई है आजकल पठान जो है वो क्या बोलते हैं उसको जेरताब है वो दहशतगर्दी में हर कोई पठान सच्ची निगाह से देखा जा रहा है पहले उर्दू स्पीकिंग को देखा जा रहा था तो ऐसा क्यों?
आई डोंट थिंक सो सर आई मेरा ख्याल ये सही नहीं है। जो पाकिस्तान में लोग पाकिस्तानी हैं चाहे वो किसी भी लैंग्वेज वाले हों किसी मज़हब से हों किसी मज़हब से चाहे आप क्रिश्चियंस हों सिख हों हिंदू हों कभी भी मेरा नहीं ख्याल कि किसी को गलत नज़र से देखते हैं हम दे ऑल द सेम। हम जब पाकिस्तान में रहते हैं ये तो मीडिया ने बाज़ दफ़ा ना ये ऐसी बातें निकाल लेते हैं मगर आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे जो क्रिश्चियंस होंगे आपके भी दोस्त होंगे जो हिंदू हैं आपके भी दोस्त हैं जो सरदार हैं तो ये मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में रहते हुए मैंने आपको कई दफ़ा पहले बताया है अनिल दलपत वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अनिल दलपत जो पाकिस्तान का विकेट कीपर था तो वो हमारे नेबर थे एंड कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने उसको कभी हमें तो पता ही नहीं था कि वो हिंदू है।
अच्छा मुझे ये बता अनिल दलपत टीम से बाहर क्यों हुआ था?
कौन?
अनिल दलपत
उसकी जगह दूसरे अच्छे लोग आ गए थे टीम से बाहर होना अंदर होना उसके बाद कौन आया था मुझे याद नहीं है यार।
अशरफ अली आया था।
अच्छा अशरफ अली आया
अनिल दलपत की खिलाफ अनिल दलपत अशरफ अली बहुत ऊपर थी। हाँ अनिल दलपत ने एक कैच छोड़ दिया था इंडिया के खिलाफ मतलब क्रिटिकल स्टेज तो इसके बिना पे उसको इमरान खान ने पारी किया था।
मैं अनिल दलपत को अच्छा जानता हूँ वो कभी हमारी जो बातचीत हुई है उसमें कभी अनिल ने ये नहीं कहा कि भाई इस वक्त मुझे इसलिए निकाला कि मैंने इंडिया के खिलाफ ये सारी बातें हैं। आई एम टेलिंग यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस वी ग्रू अप टुगेदर हम एक ही जगह पे पहले बड़े हैं तो मुझे नहीं ख्याल कि ऐसी बातें ऐसी कोई हुई हों या ऐसा होता तो मुझे पता होता क्योंकि मैं हम एक ही मोहल्ले के एक ही जगह पढ़े लिखे सब कुछ एक जगह किया हमने तो आई डोंट थिंक सो ऐसी कोई बात थी।
आपकी बात समझ में आती है लेकिन अगर जैसे अनिल दलपत के बाद सलीम यूसुफ आता तो समझ में आती है।
राशि का देव आता, समझ में आती है कि यार बहुत बेहतरीन बंदा आया। लेकिन मेरे खैर एनीवे मेरा सवाल दूसरा था, मैं तो बोला एक टाइम टू टाइम एक कॉम के ऊपर ही बुराई आती है, ऐसा क्यों होता है?
ऐसे मेरा अगेन ये देखें जी, अब तो सोशल मीडिया है ना, तो सोशल मीडिया में तो फिर भी है, हम जब मैं और आप जब ग्रो अप हो रहे थे तो उस जमाने में सोशल मीडिया था नहीं, तो उस जमाने में हम तमाम को अपने भाई बहन समझते थे। हम यह यकीन माने कि अब मुझे जब मुझे पाकिस्तान छोड़े हुए 43 इयर्स हो गए, ओके, मगर ये मैं आपको बता दूं कि जब हम पाकिस्तान में थे तो उस जमाने में हमने कभी भी, अब मैं सुनता हूँ कि शिया सुन्नी का भी वहाँ चक्कर है, बरेलवी का भी है, अहले हदीस का भी है, आप चार मजहबों का भी है वहाँ पर, फिर हिंदू क्रिश्चियंस का भी है। हम तो वहाँ पर, मैं मेरा ताल्लुक कराची से, मेरा ताल्लुक कराची से, और कराची में
क्या बताऊँ, मैं एक दफा जब नमाज पढ़ रहा था तो एक बरेलवी मसला के साहब बैठे हुए थे, मैंने कहा जमात हो रही है, बोले कहाँ हो रही है जमात, मैंने कहा वो अब मैं परेशान, अच्छा यही चीज मैंने एकदम देवबंदी का भी देखी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो किसी और समय पढ़ लेता हूँ कि वो मैंने मिला भाई जमात निकल ली, मतलब जमात हो रही है, कौन सी जमात हो रही है यार, इस हद तक मतलब
ये ना ये करवाया गया है ये चीजें ना, हमें अपने आप में अपने गले में गरेबान में झांक के देखना चाहिए कि ये कौन करा रहा है, क्यों, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले ये नहीं चीज थी, अब क्यों आ गई बीच में, ये कोई इस्लाम तो बदल नहीं गया ना, हमारा दीन तो नहीं बदल गया, हमारी कौमियत तो नहीं बदल गई है, हमारी शरीयत तो नहीं बदल गई है, तो ये चीज आई कैसे है, कौन लेके आया है, क्यों आया है? हमने तो भाई आप यकीन माने मेरा ताल्लुक अहले तशीस नहीं है, मगर मेरी वालदा अल्लाह सुब्हान तआला उनको जन्नत फिरदौस में जगह फरमाए, वो मुहर्रम के जमाने में सारी मजालिस में जाया करती थी, और हमारा फर्ज था कि हम उनको ड्राइव करके उन मजालिस में ले जाएं, और जब मजलिस खत्म हो जाए तो उनको वहां से पिक करके लेके आए। हमारा मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं कोई मेरा ताल्लुक अहले तशीस नहीं है, मगर वो जाया करती थी हमेशा, और उसके मुहर्रम के पहले 10 दिनों में हमारे यहाँ कभी नए कपड़े नहीं बने, हमारे यहाँ वो जो है 10वें मुहर्रम को फिर वहाँ पर हलीम बनाया करते थे, या वो ऐसी चीज़ें बनाया करते थे, ताज़िए निकलते थे हमारे मोहल्ले से, ताज़िए निकाला करते थे, और हम ताज़ियों में साथ होते थे, हम छोटे होते थे, मगर ताज़ियों में हमें किसी, हमारे वालदैन ने कभी मना नहीं किया कि ताज़ियों में जाया करो, हम तो ताज़ियों में पूरे पूरे मोहल्ले में ताज़िया जाया करता था, हमारे मोहल्ले से निकल के जुलदुल भी होता था उसमें, वहाँ पर जो है हम जाया करते थे पूरे कम से कम तो 3 मील का फासला तय करके वापस लेके आया करते थे ताज़िये।
आपका ताल्लुक मलीर से तो नहीं है
जी?
मलीर से तो नहीं है? मलीर
नहीं, मैं पी से सोसाइटी में रहता था मैं।
अच्छा पीछे सर, हाँ वहाँ पे भी काफी है,
है ना, तो वहाँ पर जो, तो हमने कभी, हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं ये चीज़ कि ये कौन लोग हैं, ये हमसे अलग हैं, हमसे, अब देख लीजिए आप लोग इनमें इख्तलाफ फैलाते हैं, तो मुझे अजीब सा लगता है कि यार हम जब ग्रो अप हो रहे थे तो हमने तो कभी भी नहीं सोचा ये बात, ना ये हमारे खानदान में शादियाँ हुई है, बहुत बहुत सारी खानदान में शादियाँ हुई हैं, जो शिया सुन्नी वगैरह में शादियाँ, तो ये तो ये लोग करवाया जाता है, हमारा तमाम का ईमान एक है, हमारा कुरान एक है, हमारे रसूल एक है, हमारा अल्लाह एक है, तो ये सारी चीजें ना इसमें। चलो खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
एक चीज आपसे बोल रहा हूँ, देखिए डिपेंड करता है कि आप किस इलाके में ग्रो अप हुए, और आपका तालीमी बैकग्राउंड क्या है, और आपके इलाके की तालीमी एजुकेशन लेवल क्या है। आज भी इन इलाकों में ये सब चीजें नहीं होती है, ये शिया सुन्नी देव बरेलवी ये चीजें होती है, जो कि मतलब इलाका इतना तालीमी लिहाज से इतना आगे नहीं है, या वहां का कल्चर टोटल डिफरेंट है।
अच्छी बात, बहुत शुक्रिया सर आपको, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं जो है वह जिस इलाके का हूँ मैं उसी इलाके की बात कर सकता हूँ, मेरे दोस्त मलीर में भी है, मेरे दोस्त कोरंगी में भी है, मेरे दोस्त नाजाबाद नॉर्थ नाजाबाद में भी है, फेडरल बी एरिया में भी है, गुलशन इकबाल में भी है, सारे दोस्त मेरे वो हर जगह हैं, एंड आई नेवर थॉट दैट देयर इज एनी डिफरेंट। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
जी सर,
में रहता था, और आपके नेबर में तो वसीम बारी भी रहते थे।
वसीम बारी भी रहते थे, करीब में रहते थे
जी। بالکل قریب میں رہتے تھے اور تھوڑا سا آگے چلے جائے گا جمشید انصاری مرحوم بھی ادھر ہی رہتے تھے.
جمشید انصاری ایز اے میٹر آف فیکٹ ان کے پاس دو جگہیں تھیں, ایک جو اپنا ان کا گھر تھا اور دوسری جگہ جو تھی وہ میرے نیکسٹ ڈور نیبر میں تھے. وہ بھی تھے, نرالا بھی تھے, کمال بھی تھے اور بہت سارے وحید مراد بھی تھے.
سر آپ کے وہاں پہ ایک پاکستان کے کاظم ٹرافی کے بہت مانے جانے بہت مشہور پلیئر تھے جو کاظم مزار کے پیچھے رہتے تھے, ان کا نام تھا پرنس اسلم خان باپو. ان سے بڑا بولر دنیا کے اندر آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا تھا.
اور ان کے اس کے علاوہ میں بتاؤں آپ کو تو ہم تو بہت چھوٹے تھے, مجھے تو یاد بھی نہیں ہے, مگر ہمارے گھر کے یو نو مائی ٹیننٹ یوز ٹو بی امیر الہی اینڈ کاردار.
تو آپ کو میں بتا دوں, اور آپ کے علاقے میں ٹینس پلیئر, ٹیبل ٹینس پلیئر اظہر شکور, سیما شکور,
وہ میرے رائٹ بیہائنڈ مائی ہاؤس, ایک دم میرے گھر کے پیچھے والا گھر جو تھا ان کا تھا.
اور سامنے آپ چلے جائیں وہاں باسط علی رہتے تھے.
کون رہتے تھے؟
باسط علی.
باسط علی
دریا میں
ہے,
لائن دریا میں باسط علی رہتا تھا.
اچھی بات,
کیونکہ سر میں بھی گرو مندر کا ہی ہوں.
اچھا اچھا,
نیوٹن مسجد ہے نا؟
ہاں جی ہاں جی ہاں جی.
اس کے آگے بلو کراس تھا, بلو کراس کے سامنے ماما بیبی کا اب اسکول بن گیا, ہمارا بنگلہ تھا.
اچھا 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 اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, چلے پرانی یاد ہے صاحب.
جی جی, اس کے سر میں نے کرکٹ ادھر بہت کھیلی, ہمارے جو کوچ تھے کیپٹن تھے وہ پرنس اسلم خان باپو تھے, تو وسیم باری بھی آ کے نیوٹن ہوٹل میں آ کے بیٹھتے تھے, بڑے بڑے ٹیسٹ پلیئر آ کے بیٹھتے تھے, انتق عالم گارڈن پہ رہتے تو وہ آتے تھے, وسیم باری آتے تھے, آفتاب بلوچ نظم آتے تھے.
آفتاب بلوچ اور میں 1973 میں ہم دونوں کو سلیکٹ کیا گیا تھا انڈر 16 میں, جو ٹیم سیلون جانے والی تھی اس کے لیے سلیکٹ کیا گیا تھا, مگر انفارچونیٹلی مجھے میرا کینیڈا کا ویزا ہو گیا تو میں کینیڈا آ گیا اینڈ آئی ڈنٹ پلے انڈر 16. بہت بہت شکریہ سر آپ کا, بڑی اچھی آپ نے دلائی آپ نے. ایک اور کال لوں گا. جی ہلو, السلام علیکم.
السلام علیکم ماجد بھائی.
جی جی,
ایک بات صرف, یہ آپ کے سے کسی نے انیل دلپت کی بات کی تو انیل دلپت تو ہمیں یاد نہیں
جی,
لیکن بھگوان داس تو پاکستان کے سپریم کورٹ کے
یس چیف جسٹس رہ چکے ہیں. یس,
یہ یاد رکھنا چاہیے یوسف یوہانا جو اب یوسف ہے وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن رہے ہیں.
صحیح,
تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ پاکستان کے بارے میں ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے. اور باقی پٹھان تو ابھی پاکستان کے قومی اسمبلی کے اسپیکر پشتون ہے, اسد کیسر پاکستان کے آئی بی کے ہیڈ جو ہے پورے پاکستان کے وہ پٹھان ہیں. تو میرے اپنے داماد ابھی لیفٹیننٹ جنرل بن جائیں گے, تو یہ اور نہ پشتونوں پہ ظلم ہو رہا ہے نہ کسی پہ, یہ سوشل میڈیا کا ڈرامہ ہے سارا. شکریہ.
جی جی,
تو میں کہہ رہا تھا یہ سارے ڈرامے ہیں جو لوگ کرتے ہیں, اور یہ سوشل میڈیا پہ چند افراد ہیں جو ملک کو اور بدنام کر رہے ہیں, اور قومیت و لسانی بنیاد پہ اس ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
سر ڈیپ انسائڈ ہم تمام ایک لوگ ہیں, اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, چھوٹی سی بات بتاؤں میں آپ کو, یہ تاج بھائی بات کر رہے ہیں, تاج بھائی.
جی جی جی.
اچھا تاج افضل صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بے انتہا لوگ میں جن کو جانتا ہوں وہ مائگریٹ کر کے, جب انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے تھے تو وہ پشاور میں جا کے سیٹل ہو گئے. بہت سارے لوگ ہیں جو پنجاب میں آ کے سیٹل ہو گئے, تو وہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی, میں صرف دو جگہ کی بتا رہا ہوں آپ کو, تو وہ جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو پشاور میں آ کے سیٹل ہوئے تھے تو ان کی سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن ہے اب, وہ ایسی پکی پشتو بات, ان کو اردو نہیں آتی ہے, وہ پشتو بات کرتے ہیں, وہ تو وہ جو ہے وہ اردو اسپیکنگ تھے مگر دے آل بیکیم پشتون ناؤ. اور جو لوگ وہاں آ کے پنجاب میں آ کے سیٹل ہوئے تھے, اور بے انتہا لوگ ہیں ایسے, تو وہ جو پنجاب میں آ کے سیٹل ہوئے تھے وہ اتنی اچھی طرح پنجابی بات کرتے ہیں کہ ان کو اردو نہیں آتی ہے. تو وہ
جو دوسرا لوگ جو ٹرائبل بیلٹ کی بات کرتے ہیں, ہمارے ٹرائبل بیلٹ میں
کافی سردار ہے اور کافی ان کے پورے بازار ہیں
جی.
آج تک وہ سردار جو ہے وہ ٹرائبل بیلٹ والے ہم سے بھی سخت پشتوں بولتے. آج تک ایک سردار آپ ثابت کرے جس نے یہ کہا کہ میرے ساتھ کسی نے ظلم کیا ادھر.
بس
لیکن یہ لوگ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. دوسرا, پشاور سٹی کے اندر میجورٹی جو ہے اہل تشیع ہے وہ ایران سے مائگریٹڈ ہے موسٹلی. آج تک آپ بتائیں کہاں پشاور میں یہ اہل تشیع یا سنی, یہ آگ لگانے والے لوگ ہیں جو فیس بک پہ بیٹھ کے بکواس کرتے یا وہاں سے آ کے اس بنیاد پہ یہاں ازائلم لیتے اور پھر ملک کو بدنام کرتے ہیں.
بہت شکریہ سر آپ کا. آپ جیسے لوگ اس دنیا میں قائم ہیں تو کچھ بھی پاکستان کو بھی کچھ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. اور جو لوگ ہم کو بانٹنا یا بٹوانا چاہتے ہیں یہ لوگ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے.
اصل میں کچھ میری تکلیف ہوتی ہے جب یہ جھوٹ بولتے ہیں نا, یہ سچ نہیں بول رہے, جھوٹ بول رہے ہیں.
بہت شکریہ سر آپ کا,
بہت شکریہ.
وعلیکم السلام. کوئکلی میں ایک دو کالز اور لوں گا, اس کے بعد میں پاس ٹائم نہیں ہوگا, مجھے آگے بھی بڑھنا ہے. جی ہلو, السلام علیکم.
السلام علیکم جی, مسعود اختر کر رہا ہوں. میں نے کہا میں ریڈیو دوبارہ سننا شروع کیا ہے, آپ سے ایک دن پہلے بات ہوئی تھی تو ابھی چلے آج بہت ساری باتیں آپ سے سنی. اس میں یہ پتا چلا کہ ماشاء اللہ آپ نے پاکستان کے لیے کرکٹ کا بھی سلیکشن آپ کا ہوا تھا اور یو ول بی سپوز ٹو پرفارم فار پاکستان, اور آپ ماشاء اللہ بہت زمانے سے یہاں پر ہیں, یہ تو ہمیں نہیں اندازہ تھا. تو یہ بتایا آج جو پاکستان نے میچ جیتا ہے اس پہ آپ نے کچھ بات کی یا نہیں کی؟
آج تو پاکستان کے متعلق ہم نے شروع جب پاکستان کا ہمارا جو پروگرام شروع ہوا تھا اس میں بھی کی, اور پھر وسیع الدین جو ہمارے ایک نمائندے یہاں سے باقاعدہ گیم دیکھنے کے لیے برمنگھم گئے ہوئے ہیں اور ان سے بھی ڈائریکٹ بات کی ہم نے, وہاں کا بھی تبصرہ سنا ان سے بھی کہ کیا پاکستان.
میں تو جاب پہ تھا, مجھے آج چھٹی نہیں کر سکتا تھا, بس میں نے تو وہ کمپیوٹر اسٹور کو فالو کیا. بس اٹ واز امیزنگ. پاکستان نے وہی 92 کی تاریخ دہرائی ہے اور انشاءاللہ کہ آگے کی میچ بھی جیتے ہیں اور کچھ ایسا مسئلہ ہو جائے کہ پاکستان سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے.
انشاءاللہ
بہت ٹائٹ لگ رہا ہے, ابھی بہت ٹائٹ ہے کیونکہ وہ ایک جو میچ ڈرا ہوا ہے جو میچ ہو نہیں سکتا, ایک پوائنٹ جو کم ہے پاکستان کا, اتنے لٹل ایشو.
بہت شکریہ سر آپ کا,
دعاؤں میں یاد رکھیں.
مسعود اختر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ تمام کے لوگوں کے کالز کا بہت بہت شکریہ. اب یار پروگرام کو لے کے آگے بڑھے نا, انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر بعد پھر آپ کی کالز لیں گے. 9 بجے تک میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے یہاں پر اور میری 3 لائنز ابھی بچ رہی ہیں, مگر یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا اگر میں فون کالز لیتا رہا تو پھر فون کال. بڑا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اور آپ لوگ آ کے اپنے تاثرات بتاتے ہیں اس میں, بس اسی ہمارا دن بھی گزر جاتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, کچھ بھی ہو, کوئی بھی کسی بھی کی قسم کی زبان بولتے ہوں آپ, کوئی زبان بولتے ہوں, کوئی ریلیجن ہو آپ کا, کوئی مذہب ہو آپ کا, ڈزنٹ ریلی میٹر ایز لانگ ایز یو اینڈ آئی آر پاکستانیز. ایک گرین اینڈ وائٹ پرچم ہے, اس کے طرح ہم اب آپ یہ دیکھ لیں گے وہاں پر جو آج جو میچ ہو رہا تھا برمنگھم میں جہاں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو شکست دی ہے, کوئی کسی سے پوچھ رہا تھا کہ بھائی تم کون سی زبان بولتے ہو یا تمہارا ریلیجن کیا ہے؟ جسٹ امیجن دیٹ 95% ہمارے جو وسیع الدین ہیں وہ برمنگھم میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ وہاں پر اسٹیڈیم میں بیٹھ کے پورا میچ دیکھا انہوں نے. تو وہاں سے جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ماجد بھائی آج یہاں پر جو 25,000 لوگ بیٹھا تھا, 25,000 لوگ تماشائی آئے تھے دیکھنے کے لیے میچ, اور اس میں 95% سے زیادہ جو ہے وہ پاکستانی تھے. ہر ایک نے اپنے چہروں پہ پاکستان کے فلیگ بنائے ہوئے تھے, گرین کپڑے پہنے ہوئے تھے, پاکستان کا فلیگ لے کے. مگر یہ آپ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ کسی نے ایک دوسرے سے نہیں پوچھا کہ آپ کون سی زبان بولتے ہیں, یا آپ کا ریلیجن کیا ہے, یا آپ حنفی ہیں, یا آپ شافعی ہیں, یا آپ ملکی ہیں, یا آپ نو بڑی آسک اینی تھنگ, آپ بریلوی ہیں, آپ شیعہ ہیں, آپ سنی ہیں, نو دے ور آل انڈر دا سیم فلیگ, ایک فلیگ کے تلے سارے لوگ جمع تھے وہاں پر, اور سب کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہرا سفید جو ہمارا फ्लैग है उसके साथ उन्होंने नीला या पीला बनाया हुआ है कि भाई हम शाफी हैं तो हमारे साथ लाल होना चाहिए नुक्ता इसके साथ, हम हनफी हैं तो हमारे साथ ये होना चाहिए, हम अहले तशी हैं तो हमारे साथ ये होना चाहिए, ये लिखा होना चाहिए, हम सुन्नी हैं तो हमारे साथ ये होना चाहिए. Nobody cared who you are. You went there as Pakistanis. Or that what the spirit is. That's what the spirit is. We were all Pakistanis and we are all Pakistanis. हम पाकिस्तानी बन के वहां गए, मैच देखा हमने, और अगर किसी के पास साथ इत्तेफाक हुआ हो कि किसी ने किसी से पूछा हो आपको कोई स्टोरी पता हो तो मुझे बताइएगा जरूर कॉल करके कि भाई नहीं नहीं वहां पर तो मेरे जो नेक्स्ट डोर नेबर नेक्स्ट डोर की कुर्सी पे बैठा था उसने कहा यार कि आप कौन सी जबान बोलते हो, आप तो पाकिस्तानी नहीं हो, या आप कौन से मजहब या कौन से रिलीजन से ताल्लुक रखते हो, आप मुसलमान नहीं हो. मेरे भाई डोंट लिसन टू दीज पीपल. मेरा मैसेज आपको हमेशा ये रहा है डोंट लिसन टू दीज पीपल हु आर ट्राइंग टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अस. हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है. कनाडा में भी फ्रेंच बोली जाती है, आप न्यूफाउंडलैंड की तरफ चले जाए तो उनका एक्सेंट एकदम ही डिफरेंट है. बहुत सारे लोग तो उनके एक्सेंट को समझ भी नहीं सकेंगे. यहां आइए आप, वेस्ट में जाइए आप, तो वहां का एक्सेंट थोड़ा फौरन पता लग जाता है कि आप न्यू ब्रंसविक के हैं, आप का ताल्लुक न्यूफाउंडलैंड से है, आपका ताल्लुक टोरंटो से है, या आपका ताल्लुक ब्रिटिश कोलंबिया एंड प्रेरीज से है. आप बात करें उनको पता लग जाएगा आपको. मगर हमने कभी किसी को नहीं कहा कि आप कैनेडियन नहीं है. We are all Canadians. We are all Canadians. तो क्वेबेक की एक टीम है, अब क्वेबेक में हॉकी की एक टीम है मॉन्ट्रियल. किस नाम से जानी जाती है वो? मॉन्ट्रियल Canadians. मॉन्ट्रियल Canadians. बाकी की और टीमें हैं, अल्बर्टा में भी टीम है, एडमिंटन में भी टीम है, यहाँ भी टीम है, विनिपेग में भी टीम है. मगर जो क्वेबेक की जिसको आप कहते हैं कि नहीं वो क्वेबेक वाले जो वो फ्रेंच बोलने वाले तो वो कैनेडियन नहीं है, कभी किसने कहा है? नो, वी आर ऑल कैनेडियंस अंडर वन फ्लैग. सेम वे वी आर ऑल पाकिस्तानीज अंडर वन फ्लैग. जो आपके ये जो बात डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं ना, आप समझ जाइए कि जो बात शख्स भी ऐसी गलत बात करे कि वो या कौमियत की बात करे या लैंग्वेज की बात करे या रिलीजन की बात करे, दे डोंट लव पाकिस्तान. दूर हो जाइए उन लोगों से, फौरी अपने आप को दूर कर लें, क्योंकि वो ऐसा ना हो कि मेरे और आपके दिमाग में भी वो कुछ गंद डाल दें. वी आर ऑल पाकिस्तानीज. Pakistanis, we are all Pakistanis. Remember that. हम सारे के सारे पाकिस्तानी हैं, हमें उनसे कोई ताल्लुक नहीं है. और ये रिलीजन के उस पर तो जाया मत करें कि किसका क्या रिलीजन है या किसका क्या मजहब है, क्या है. अल्लाह एक है हमारा तमाम का, कुरान हमारा तमाम का एक है, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है कि आपके आपका कौन सा मजहब है. जी आप मेरा कुरान मेरा दूसरा है, आपका कुरान दूसरा है. हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके तमाम लोगों के एक हैं, कोई डिफरेंस नहीं है कि भाई नहीं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे से ज़्यादा करीब है, आपसे ज़्यादा कम करीब है, ऐसी कोई बात नहीं है. तो डोंट लिसन टू ऑल दीज थिंग्स. ज़िंदगी में खुश ज़िंदगी गुजारे और उसके बाद फिर आखिरत के लिए कुछ जमा कर लें. एनीवे चलिए साहब, इस पर्चम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं. समा फरमाइए. Yes.
Mohammed Sadiq, All Debt Solutions, Certified Credit Counselor, Free Debt Assessment, Consumer Proposal, Debt Settlement. Reduce or eliminate interest charges from your credit cards. Pay your debt with one affordable monthly payment. Stop collection call. Avoid bankruptcy. Start saving for your future. Mohammed Sadiq, Certified Credit Counselor, 416-671-0577, 671-0577. Ruby Jewelers, खुशी के मौके पर गोल्ड और डायमंड की खरीदो फरोख्त में 28 साल से Ruby Jewelers आपके फैमिली ज्वेलर्स डायमंड इयररिंग्स बैंगल्स डायमंड रिंग्स इन प्लैटिनम साइज लेने से मेकिंग और डिलीवरी तक आपकी सेटिस्फेक्शन की गारंटी पाकिस्तान दुबई सिंगापुर इंडिया दिलकश डिजाइन कंगना बिंदिया झूमर 7080 एयरपोर्ट रोड Ruby Jewelers गोल्ड या डायमंड की खरीदारी में क्वालिटी के जामिन Ruby Jewelers 905-677-6888 Ruby Jewelers
Asian Food Center 905-793-1338 Aapke kitchen ki tamam zaruriyat ek hi chhat tale Fruits and vegetables, groceries and staples, bread, dairy and egg, beverage and confectionery, branded foods, personal care and household, sweets and samosas. Order now for in-store free pickup 905-793-1338 Asian Food Center Asian Food Center
हफ्ते के सातों दिन खुलने वाली मैकेनिकल शॉप ब्राइट ऑटो सर्विस कोई भी मेक या कोई भी मॉडल अगर आपकी गाड़ी में खराबी हो जाए तो ले आइए ब्राइट ऑटो सर्विस पर गाड़ी की डिटेलिंग या फिर रस्ट प्रूफिंग सिर्फ और सिर्फ $50 में तशरीफ लाइए ब्राइट ऑटो सर्विस 8 स्ट्रैटन एवेन्यू ब्रैम्पटन एडवांस एंड डिक्सी के कॉर्नर पर 9057900019
जी साहब विक्रम वेलकम बैक अगेन एंड 6:52 और 7 सेकंड हमारी घड़ियों में हो चुके हैं साहब जीटीए में अगर आपने रेजिडेंशियल या कमर्शियल पेंटिंग करवानी हो इंटीरियर या एक्सटीरियर तो भाई बड़ी अफोर्डेबल प्राइस के साथ आपका काम करके देंगे आपने हाउस पेंटिंग करवानी हो वॉलपेपर को रिमूव करवाना हो स्टकों को रिमूव करवाना हो रिपेयर सीलिंग करवानी हो आपने ड्राईवॉल रिपेयर करवाना हो क्लीन वर्क की गारंटी देते हैं और सीनियर्स को डिस्काउंट भी देंगे जीटीए में रेजिडेंशियल या कमर्शियल पेंटिंग के लिए इंटीरियर या एक्सटीरियर पेंटिंग के लिए आप सलीम सिद्दीकी को कॉन्टैक्ट कर लें सलीम सिद्दीकी 647-271-1974 इनका फोन नंबर है और जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि हलाल फूड फेस्टिवल आ रहा है साहब जुलाई 20th एंड 21st को 20 और 21 जुलाई को हलाल फूड फेस्टिवल आ रहा है और ये आएगा साहब एयरपोर्ट एंड डेयरी के कॉर्नर पर जहां पर इंटरनेशनल सेंटर है ना वही इंटरनेशनल सेंटर में लाइव कुकिंग डेमोन्स्ट्रेशन होंगी यहाँ पर फ्रॉम ट्रेंड शेफ्स इसके साथ साथ स्टेज परफॉर्मेंसेज होंगी वर्कशॉप होंगे थ्रू आउट बोथ फेस्टिवल डेज में 20 और 21 तारीख को इसके अलावा बहुत सारे स्टॉल्स होंगे खाने पीने के स्टॉल्स होंगे यहाँ पर तो आप पहुँच जाइए साहब 20 और 21 तारीख को कैलेंडर पर मार्क कर लें हलाल फूड फेस्टिवल इन टोरंटो एयरपोर्ट एंड डेयरी के कॉर्नर पर इंटरनेशनल सेंटर में फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप अरशद कुरैशी को फ़ोन कर सकते हैं 647-286-5727 इनका फ़ोन नंबर है चलिए साहब एक और कौमी नामा जब बात निकली है पाकिस्तान की पाकिस्तान के पाकिस्तान जिंदाबाद साहब पाकिस्तान जिंदाबाद समा फरमाइए ये वतन तुम्हारा है मेडिसन साहब की आवाज़ में Oh,
इस चमन के फूलों पर रंग आप तुमसे है, इस जमीन का हर दर्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरुबर तुम्हारे है, कुशल के ये जाले रह गुजर तुम्हारे है, ये बदन तुम्हारा है, तुम पास बस तुम्हारा है, तुम्हारा